इसके बाद अब आगे सूरत हदीद से ऑनवर्ड मुसब्बिहात है। सब्बाह से या युसब्बिहु से शुरू होने वाली सूरतों में पहली सूरत हदीद है। 29 आयतें हैं इसकी। मैं तो आपको यही कहूँगी कि इसकी ज़रा इन डेप्थ तफसीर सुने। हमने मेरे लिए 6 माह लगाकर सूरत हदीद की तफसीर की थी, वर्ड टू वर्ड, एक एक लफ्ज़ की, और वो इतनी इन डेप्थ होती है कि उसमें एक एक लफ्ज़ पे बाज़ पूरी 1 घंटे में बात होती है। और इसमें निफाक के पुल खोल दिए गए। आइए देखते हैं। पहली आयात 1-6, कायनात अल्लाह ताला की फरमा बरदार है तो तुम भी हो जाओ। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। और आप कभी पहाड़ी इलाकों में जाए ना तो इस सूरत की तिलावत सुनिए ज़रा इधरी सबकर की आवाज़ में, ऐसे लगता है कि अब वे भी वाली कैफियत है कि साथ पहाड़ भी पुकारे हैं, तस्बीहात हैं, अल्लाह की खूबियाँ हैं, उसके आसमान और ज़मीन के मालिक होने की बात है, ज़िंदा करने और मारने की बात है। और आप देखें कि यहाँ 4 नाम है अल्लाह के, वल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन। अल्लाह के इन 4 नामों के साथ जो शख्स उसको पुकारता है, क्या अल्लाह उसकी नहीं सुनेगा? क्या शैतान के मुकाबले में अल्लाह तआला उसको काफ़ी नहीं होगा? फिर आगे आयत नंबर 7 में ईमान और निफाक का मौजू शुरू हो रहा है। आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व अन्फिकू मिम्मा जालकुम मुस्तखलफीन फी। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और ख़र्च करो उसमें से जिस पे उसने तुम्हें कंस्टोडियन बना दिया, जिसने तुमको उसके ऊपर एक किस्म का जिम्मा दे दिया। बस जो लोग ईमान लाए तुम में से और उन्होंने खर्च भी किया, उनके लिए अजरे कबीर है। सूरत हदीद में खर्च करने की बहुत बात है, क्योंकि इस्लाम ऐसे दौर से गुजर रहा था और गुजर रहा है। फिर आगे सवाल दिया गया, तुम दिल से ईमान क्यों नहीं लाते? आयत 8-11 में वमा लकुम, और ये वमा लकुम का अंदाज़ आपको इस सूरत में और सूरत तौबा में भी दिखा था। क्या हो गया तुमको? तुम ईमान नहीं लाते अल्लाह और उसके रसूल पे, वो तुमको बुलाते हैं कि तुम ईमान लाओ अपने रब पे, तुम्हें क्या हो गया? तुम कान क्यों नहीं धरते? उसने तो तुमसे पुख्ता वादा लिया अगर तुम मोमिन हो, और वो तो वही है जो नाजिल करते अपने बंदे पे आयात बैनात ताकि तुमको अंधेरों से रोशनी की तरफ ले आए, और अल्लाह अपने बंदों के साथ रऊफ भी और रहीम भी है। तुम्हें क्या हो गया कि तुम नहीं खर्च करते उसके रस्ते में? वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द। अल्लाह को तुम्हारे खर्च की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन व आसमान की सारी मीरास उसकी है, वो तो खुद भी अपने लिए अपने कामों के लिए करे। अब देखिए, पहाड़ों की तहों में सोना चांदी रखा ना तो बाहर ले आए, तुमसे उसने क्यों मांगना? या तुम उसको अपनी कोई एक तोले की चीज़ दे देते हो तो कोई उससे तो उसके काम नहीं चलते, फ़ायदा तो उसका तुम्हें हो रहा है। इसलिए फरमाया कि ला यस्तवी मिनकुम मन अन्फक़ मिन क़ब्लिल फ़तह व क़ातला। यहाँ लिखिए, कुछ नेकियाँ टाइम बाउंड होती हैं, कुछ नेकियों का दरवाज़ा बस एक बार खुलता है, जब इस्लाम को माल की ज़रूरत हो और आप और मैं अपना माल बैंकों में छुपा लें तो ये जुर्म है। हाँ, जब इस्लाम को माल की ज़रूरत नहीं है तो आपके बैंक में करोड़ों भी रहे, कोई बुरी बात नहीं है। इट्स ओके, आपने ज़कात दी हुई है, और आप तो जमा भी इसलिए कर रहे हैं ना कि फिर कोई और मार्का आया तो मैं उस पर लगा दूंगी, फिर कोई प्रोजेक्ट आएगा तो उसमें लगा दूंगी। असल बात यह है, मोमिन का माल अल्लाह के रस्तों के लिए प्रिजर्व में हो, राउंड में हो, जिसको आप कहते हैं कैश इन हैंड्स, रनिंग में हो, कोई हर्ज नहीं। नुकसान क्या है कि माल आपके हाथों में पड़ा क्या ज़ाया हो रहा है और अल्लाह के रस्तों के प्रोजेक्ट रुके हुए, काम रुका हुआ है। इसलिए कहा कि अब करना है तो कर लो, बाद में कोई नहीं इतना फ़ायदा होना। अब देखिए, कभी कभी आपके लिए 100 के नोट की कितनी हैसियत है। आपको पानी की बॉटल लेनी है, आपने रोज़ा खोलना है, या आपने कहीं जाना है, बस का टिकट लेना है 100 रुपये का, वो 100 रुपया उस वक्त अगर आपके पास ना हो और कोई आपको ऑफ़र कर दे, क्या आप उस शख्स की कदर करेंगे? बहुत करें। इसके बरक्स जिस वक्त आपके अपने पर्स में पहले से 3-4 हज़ार रुपये रखा है, कोई 500 भी दे देगा ना, वो हैसियत नहीं होगी। आज इस्लाम को आपके मेरे माल की, वक्त की, हमारी जातों की, हमारे घर की, हमारी औलादों और हमारी स्किल्स की ज़रूरत है। इसलिए सवाल उठाया, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है कोई दे? खामोशी। अबू दहदा उठे दे गए, अबू तलखा उठे दे गए, साहबा तो खुशियां मनाते थे, अच्छा अल्लाह हमसे कर्ज मांगता है, और हम कहते हैं नहीं, हम तो खुद ही कर्जों में हैं। तो सवाल क्या है कि कर्ज हसना कौन सा अल्लाह कबूल करेगा? जो पाक और हलाल माल से दिया जाए, घटिया और नापाक माल से ना दिया जाए। फिर किसी को देने के बाद एहसान ना जतलाया जाए, किसी को ईज़ा ना दी जाए, और वो कर्ज जो इंसान अल्लाह के दीन के लिए दे उसको अल्लाह कर्ज हसन कहता है, और वो कर्ज जो इंसान अल्लाह की रज़ा की खातिर दे, देते हम दुनिया में अपने आप को हैं, क्योंकि दीन का काम हमारा अपना, हम किसी से क्यों मांगे, हम अपना देंगे, पहले अपना तो दे लें फिर किसी और का डालेंगे। देखिए ना, एक लफ्ज़ होता है इन्वेस्टमेंट और एक लफ्ज़ होता है चंदा, डोनेशन। चंदे और डोनेशन में सोच के को बुरा ख्वाब तो नहीं आया हुआ, अच्छा चलो सदका कर देते हैं, अच्छा कुछ पैसे ज़कात के रखे हैं दे देते हैं, हाय बच्चा नहीं आया स्कूल से, अल्लाह खैर कर मैं 1,000 रुपया दूंगी, ये तो है हमारी मजबूरियाँ। और इसके बरक्स दूसरी तरफ क्या है, अल्लाह को कितनी ज़रूरत है, अल्लाह के दीन की कितनी ज़रूरत है। आप जब अल्लाह के लिए अल्लाह के नाम पर कोई चीज़ देते हैं ना, अल्लाह उसको कहता है आई विल गिव इट बैक टू यू, मैं दूंगा तुम्हें वापस। और आगे फिर पुल सरात की कुछ झलकियाँ हैं 12 से 15 में, ये भी आयात पढ़ने सुनने के काबिल है। आप इन डेप्थ ना भी पढ़ें, आप जाकर तफसीर के सेट में से इन आयात की तफसीर सुन लें, किसी सेट की सुन लें, सबीलुल जन्ना की सुन लें, नूरुल कुरान 23 जो नूरुल कुरान कोर्स हमने 2013 में किया था उसकी रिकॉर्डिंग ऐप पे मौजूद है, रूहुल कुरान की मौजूद है, सबीलुल हुदा नाम की है, यानी इस 5-6 तो सिर्फ तफसीर के सेट nurulquran.com या इसके इर्द गिर्द ऐप्स और यूट्यूब पे हैं, और किसी और की भी सुन ले जिसकी दिल चाहे, लेकिन इन आयतों के आईने में हम खुद को पहचाने कि हम ईमान के किस दर्जे पे हैं। यौम तरल मोमिनीन वल मोमिनात यस्सा नूरुहुम बैन अईदीहिम व बईमानिहिम, क्या हम इनमें शामिल हैं? ईमान वाले का नूर उसके आगे पीछे उसके दाईं तरफ होगा, जिसकी वजह से जहां तक खैर गई उसका नूर वहां तक होगा, जिसकी नेकी का असर कहीं भी गया उसका असर होगा। इमाम बुखारी का नूर कोई समेट सकता है? अबू हुरैरा से जो हदीसें गई उसके इल्म को नूर के कुछ समेट सकता है? आपको क्या पता कि हम एक बंद रूम में बैठे ये बात कर रहे हैं, ये किस किस की हिदायत का जरिया बननी है, और दुआ करते हैं कि अल्लाह इन चीज़ों को पानी की तरह फैला दे, बारिश के कतरों की तरह फैला दे, समंदर की मौजों की तरह फैला दे, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। बहरहाल आगे मुनाफिकीन और मुनाफिकात की कुछ बातें हैं, ईमान वालों से कहेंगे ज़रा देखो ना हमारी तरफ, उनजुरू ना नकतब इसमें नूरिकुम, हम एक चिंगारी ले लें तुम्हारे नूर में से, कुछ हमें भी तो दे दो अपनी रोशनी। पुल सरात अंधेरे में है, नीचे जहन्नुम है, आंकड़े हैं, कलूब हैं, फिसलन है, बाल से बारीक तलवार से तेज, स्लिपरी रास्ता है और बिजली नहीं है। और ईमान वाले अपने नेकियों के नूर में कोई अदन तक और कोई मदीना तक और कोई पाँव के अंगूठे के नूर पे चले, ईमान की एक छोटी सी टार्च तो थी, मुनाफिक के पास कोई नूर ही नहीं, शुरू में था, जब एन बीच में खड्डे के करीब पहुंचा तो नूर चला गया। आज जैसी नेकियां थी शुरू करते हैं छोड़ देते हैं, 4 दिन नेकी की छोड़ दिया, उम्रे पे गए अच्छे नेक बन कर आए, बाद में फिर नमाजें छोड़ दी। अल्लाह कहते हैं ये वहां कहेंगे, जवाब सुनिए, कील अर्जियो वराकुम, जाओ गो बैक, नहीं मिलेगा तुम्हें आज। फल तमिस नूरन, अपना नूर खुद ढूंढो, लमस इल्तमसा लफ्ज़ है इधर, टटोलना नहीं होता अंधेरे में बंदा टटोलता है, खुद जाकर अपना नूर दुनिया से लाओ। और ये भी बातें हो रही होंगी, फदूरी वबैनहुम बिसूरिल लहू बाब, फिर उनके बीच में एक दीवार कर दी जाएगी जिसमें एक दरवाज़ा होगा जिसके अंदर की तरफ रहमत और उसके बाहर की तरफ अजाब होगा। कोई कहता है याराफ है, कोई कुछ है, हम कहते हैं जो अल्लाह कहते हैं वही है। अब यहाँ वो सवाल जवाब जो ना दू ना हूँ अलब न कुमा कुमा, वो मुनाफिकीन जो दोगले थे जो दीन और दुनिया को रखो लिबरल लो पता नहीं क्या स्लोगन्स यूज़ किए हुए थे, वो कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहते थे, हम एक घर में नहीं थे बेगम, मियाँ साहब क्या मैं आपके साथ नहीं थी, मामा क्या मैं आपके साथ नहीं रहता था? वो कहेंगे यस कालू बला, यस तुम थे तुम्हारे साथ, बल 4 चीज़ें नोट कर लीजिएगा, वला किन्नकुम फतनतुम अनफुसकुम, तुम्हारे 4 कसूर हैं, तुमने अपने आप को खुद फितनों में डाला, व तरबस तुम और तुम इंतज़ार में ही रहे, डिली डेली का शिकार ही रहे, और वरतब तुम शक में रहे, हत्ता के वगर्रत को मोला मानिश, तुम्हें आरजुओं के धोखे ने पकड़ लिया यहाँ तक कि हमारा हुक्म आ गया, और धोखे बाद शैतान ने तुम्हें धोखे दिए, जाओ आज तुमसे ना तो फदिया लिया जाएगा और ना उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, और ठिकाना तुम सब का आँख है, आज वही तुम्हारी मौला है और वो बुरा ठिकाना है, यानी मुनाफिक और काफिरों को इकट्ठा कर दिया गया। दिल हिल जाता है इन आयतों को सुन के, आज के मुसलमान में ये 4 जुर्म खुल के दिखते हैं, आजमाइशें फितने और शक, और बड़ी बड़ी हकीकतों को अभी तक समझ ही नहीं पा रहे कि अच्छा ये पर्दा है कि नहीं, अच्छा सूद हलाल है कि नहीं, अच्छा ऐसे वजू हो जाता है कि नहीं। तुम्हें इतनी उम्र होगी समझ नहीं आई, तो जाओ फिर अगली आयत में एक पैगाम है क्या कि अभी भी नादिम होने का वक्त नहीं आया। आयत 16, अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ला मिनल हक, क्या अभी भी वो वक्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल अल्लाह की याद अल्लाह के जिक्र के लिए डर जाए। हम अपने आप से पूछें, अभी भी मेरा दिल नहीं खुलेगा? इतना कुरान का जिस्त ले लिया, हमने छोटे छोटे चंक्स लिए हैं इस सेट में ना, और जब हम पूरा लें तो क्या वो खजाना होगा। समंदरों का पानी पीना लगता है कुरान को पढ़ना। लिहाजा ज़रूरत है कि इस किताब के लिए कुछ वक्त निकाला जाए। दिल सख्त हो जाता है तो दिलों की सख्ती दूर करने का कुरानी रास्ता आयत 17 से 98 में, ए लमु अन्नल्लाह युहिल अर्द बादा मौतिहा। अल्लाह एक बड़ी प्यारी मिसाल दे के आगे बताने लगे हैं आपको। मुझे यहाँ बस इतना है कि मुर्दा ज़मीन जिंदा होती है ना, तुम भी कब्रों से निकाले जाओगे। हाँ, जो सदका करने वाले अल्लाह को कर्ज देने वाले हसना, उनका दुगने का दुगना होगा और अजर भी बहुत बड़ा है। फिर कुछ लोग अल्लाह पर ईमान ला के, उसके रसूलों पर ईमान ला के, सिद्दीकीन और शुहदा के दर्जे पे पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों का अजर और उनका नूर अल्लाह के ज़िम्मे है। इसके बरक्स कुछ अंधेरों के राही हैं। और अगली आयत जो बहुत ही अहम है, पूरी ज़िंदगी को 5 अदवार में बांट दिया, आयत 20, ए लमु अन्नमल हयातु दुनिया लाइबुम वलाहुम वज़ीनतुम वतफाखुरुम बैनकुम वतकासुरुम फिल अमवाली वल औलाद। बचपन में खेल प्यारा होता है, बच्चा हर चीज़ में खेलता था कि माँ नहलाने लगती है तो वो पानी से खेलने लगता है। लाइब ज़रा से बड़े हुए, ज़रा 8 10 12 साल, तो जवानी की कुर्बत में लहवियात आती हैं जिनसे मुखालिफ का ख्याल आने लगता है। ज़रा और गए 20s में गए तो जीना, हर चीज़ खूबसूरत, दुल्हन का जोड़ा, कपड़े, गाड़ी सजेगी, कमरा सजेगा। अमूमन शादी के ये दिन होते हैं। और जब 30+ में आप आते हैं तो तफाखुरुम बैनकुम व तकासुरुम, तफाखुर फ़ख्र, उसने इतना पढ़ा, मेरे बेटे की इतनी अच्छी डिग्री है, उसने तो घर बना लिया। और जब 50+ 60 में आ जाते हैं तो तकासुरुम फिल्म वाली वाला औलाद, फिर बुढ़े बाबे बाबियाँ बैठे अपने पोते पोतियाँ और दौलतों को गिनते रहते हैं। तो आयत 20 में इंसानी ज़िंदगी के 5 अदवार, बचपन से बुढ़ापा और फिर अर्जल उम्र, देखा जाए तो हम सब का व्हील ऑफ लाइफ इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। अल्लाह से दुआ करें कि हमारी ज़िंदगी बामकसद हो जाए। फिर आगे आयत 21 में मगफरत और जन्नत की तरफ लपको। अब तुम्हारी उम्र पैसों को कमाने से ज़्यादा नेकियों को कमाने की है, अब घर को बड़ा करने से ज़्यादा कब्र की कुशादगी की है, इसलिए साबिकु इला मगफिरत मे रब्बिकुम, जो हो गया सो हो गया, गुनाहों पे माफ़ी मांगो और उस जन्नत की ख्वाहिश रखो जिसकी चौड़ाई या जिसकी अर्ज आसमानों ज़मीन जितनी है और वो मुत्तकीन के लिए तैयार की गई। फिर इसके बाद आयत नंबर 22 से 24 में, कामयाब वो जो अल्लाह के हर फैसले पे राज़ी हो, और इस आयत का ताल्लुक तकदीर से भी है। मा असाब मिन मुसीबतें फिल अर्दी, और नहीं पहुंचती कोई मुसीबत ज़मीन में न तुम्हारे अपने नफ्सों में, इल्ला फी किताब मिन कब्ल, वो किताब में लिखी हुई तुम्हारे लिए, वो बात लोहे महफूज में लिखी गई थी इससे भी पहले कि नबराहा, इन नज़ालिक अल्लाह यसीर, यानी तुम्हारी तकदीरों के पट्टे तुम्हारे गले में डाले हुए अल्लाह ने। और ये तुम्हें क्यों बताया जा रहा है? लिक इलाता सोला माफा तक, ताकि गम ना करो, मायूस ना हो जाओ उस पे जो तुमसे फौत हो गया, नुकसानों पे इतना दिल मैला ना कर लो कि जान हिलकान कर दो, शुगर हो जाए, परेशान है जी दुनिया के गमों ने खा लिया। और वला तफरहो, खुशियाँ भी ना मनाओ, छिछोरी हरकतें भी ना करो, बीमा आता कुम उस पे जो तुम्हें दिया, खुशी में आपे से बाहर ही ना हो जाओ। वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, जब अल्लाह के रस्ते की बात आती है तो अल्लज़ीना यबखलूना, और जब अपनी बात आती है तो कहते हैं और कब लगाएंगे और कहाँ लुटाएंगे, नोट जो है वो लुटाने शुरू हो जाते हैं और लोगों को भी बुखल की बात करते हैं। तो लिहाजा अब सूरत के एंड में तमाम रसूलों के मिशन की बात है, और वो क्या था? कियाम निज़ाम अदल। हर नबी ने आकर दुनिया में अदल का निज़ाम कायम करने की कोशिश की, और इसी में लफ्ज़ वअन्ज़लनल हदीद फ़ी ही बास, यह है सूरत हदीद, लोहा, वेपन्स की तरफ भी इशारा है कि वक्त के हिसाब से ज़रूरत के तहत से हर चीज़ रखी जाएगी। लेकिन वह मुनाफ़ी लिन्नास, इंसानियत को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो उसके नफ़े की है, उसको रखा जाएगा। और वलियालम अल्लाहु मैयन सुरुहु व रुसुलहु बिल गैब, इस पे गौर कीजिए, आप और मैं चेक किए जा रहे हैं, वी आर बीइंग टेस्टेड, वी आर बीइंग वॉच्ड, कि आप में से कौन है जो अल्लाह और उसके रसूल को बिन देखे उनकी मदद करता है, मुराद उसके दीन की मदद करता है। हु वॉन्ट टू वॉलंटियर, हु वॉन्ट टू बी अनसारुल्ला, आपके मेरे लिए रास्ते खुले हैं। वेबसाइट पे अनसारुल्ला का यानी कह लीजिए कि वॉलंटियर फॉर्म भी है। बहुत सारे लोग कुरान सुनने के बाद रब्ता करते हैं, हमसे खिदमत लें, हमसे काम लें, और उसमें बड़ी बड़ी स्किल्स वाले लोग हैं। आप सुनने वालों में भी किसी को लग रहा है कि मैं कोई काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, आप nurulquran.com/volunteer में जाकर देखिए, आपको फॉर्म मिलेगा। उसके बाद फिर आगे रबते आपके शुरू हो जाएंगे, और फिर आखिर में रहबानियत की बात है, दीन के तकाजों से फरार की राह। 26 से 27 ये भी एक एक्सट्रीम है, सब छोड़ छाड़ के निकल जाओ जंगलों में, नहीं होगा ये। इन्हीं बच्चों में रहकर, इन्हीं शौहरों इन्हीं बीवियों में रहकर आपने मैंने दीन के तकाजे हमने पूरे करने हैं, और फिर ईमान और तकबा वालों के लिए रहमत के दोहरे हिस्सों की बात है, आयत 28 से 29 में, जिस पे सूरत पूरी होती है। जितना ईमान जितना तकवा उतनी रहमत उतना उसका हिस्सा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम, अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। तो अल्लाह ताला हमें इन पारों का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।